Let's Talk Development, Season 2, Episode 4.
Assalamu alaikum and a very warm welcome to this latest episode of Let's Talk Development. My name is Sheriff Kanasit. I'm an assistant professor of economics at LUMS. And today I'm going to be having a conversation on digital tax transformation in tax administrations in Pakistan. So my guest today is Mr. Mansoor Sultan. Let's start with a brief introduction of Mr. Mansoor. Mr. Mansoor Sultan is a digital change leader with over 27 years of experience in the areas of financial services, fintech, govtech, and proptech. He has held chief experience officer roles at the country, regional, and global levels in key business and technology functions. Mansoor has extensive experience dealing with business leaders and technologists and has personally presented to the Prime Minister of Pakistan. Mansoor Saab has a strong background in transaction banking and digital channels with expertise in selling, designing, developing, and supporting multi-million dollar projects for HSBC Group. Mansoor has worked in various locations, including London, Riyadh, Islamabad, Lahore, and Karachi. He's highly skilled in digital strategy and transformation, vendor management, portfolio and program management, and risk management. Mansoor is a startup mentor for Stanford Seed Spark program and has provided digital transformation advisory services as a freelance consultant. Mansoor has also held chief information officer positions at Emirat Group of Companies, Dean Global Private Limited, and the FBR, Federal Board of Revenue. He has also worked as a head of European technology transformation for commercial banking at HSBC and as the head of digital transformation for wholesale banking at Saudi British Bank. Mansoor has a chemical engineering degree from University of Texas at Austin and an information systems degree from Texas Tech University. His continued education has included courses from Vanderbilt University, Deloitte Digital, Earthwatch, London Business School, and Swift. He has also published reports and articles on the future of banking and technology. Mansoor Saab, it's a pleasure to have you here. Thank you so much for joining us. Now, before we dive into the digital transformation of tax administrations, I would like you to start by explaining what is digital transformation and what it really entails.
Dr. Saab, thank you so much. First of all, Bismillahirrahmanirrahim. It's a great opportunity to be here. Thank you so much for that. I think you've hit the nail on the head, if I may say so. Because these definitions are slightly used interchangeably, especially in the public sector in Pakistan. So digitization, digitalization, and digital transformation are three distinct areas. And unfortunately, we use it quite interchangeably. So digitization is basically taking a physical point of entry of data, for example, say a form that a person may fill out, and changing into an electronic form, so making it available electronically to be filled. Now, the rest of the process downstream is not touched at all. So a lot of organizations feel quite happy about the fact that they've digitized their process. It's only an input. Now, when you take the data received from digitization and actually use it in a business process to actually either create business decisions based on that or optimize a process, that is called digitalization. Okay. And most of our public sectors tends to stop at that point. Digital transformation is actually taking a step back from that and looking at the process end to end. So if, for example, if it's a tax journey, from the point of where a citizen or a taxpayer registers for that service, all the way till they file their taxes, they send in, or if they returns, and if they need to pay additional tax, they make that payment, or if they need to receive a refund, if they paid excess, then that entire end-to-end journey is transformed. And that is where you start to see a lot of value coming in. So when I do presentations, I actually show a chart where this journey goes up as in value for, you know, bang for the buck, you could say. The amount of effort spent on doing that process or digitization, digitalization, and digital transformation, but also the value that an organization gets out of it. So I think that is very, very important to understand, first of all. And then we can, you know, go from there.
Thank you. I think this is a great point. I think it's very important to understand the distinction that you're highlighting between digitization, digitalization, and digital transformation. So now let's hone in on the role of this process in tax administration. So how do you see this process of digital transformation can effectively help tax administrations more generally in developing countries context, and particularly again Pakistan pe focus karna chahe. Mm-hmm. So how would you say iski jo potential impact hai or the role it can play wo kis tarah se aap usko articulate karenge?
So I think that's a very important point as well. The nature of taxes as such, unfortunately, it's always a post facto type of an arrangement. So if a person is employed, they are the only ones who actually, as their salary gets paid into their accounts, their taxes, due taxes, are deducted at source. Mm-hmm. For anybody else who is outside of the very traditional employment scenario, whether it be freelancers, contractors, doctors, jewelers, any kind, other kind of an organization or a person, for them, they actually have to make an effort to pay their taxes. Mm-hmm. So it's post facto. It's after they have received their income, now they're paying their taxes,
it's
right?
Their discretion. How they
it's discretionary. So as soon as discretion comes in, unfortunately, in our in our culture, tax payment of taxes is considered to be a huge burden, because people, what they do is they don't understand, or they don't see, at least, what is the relief that they're getting out of paying those taxes. Mm-hmm. So जिस तरह मैं लोगों को समझाता हूँ कई दफ़ा कि हमारा मुल्क चलता किस तरह से, आप टैक्स पे करेंगे, आपको रेवेन्यू मिलेगा, तो आपका मुल्क आगे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, वगैरह वगैरह. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, दे कांट, नन ऑफ दिस कैन रन विदाउट पीपल पेइंग देयर टैक्सेस.
ऑफ कोर्स,
राइट, दैट्स अ टैक्स लायबिलिटी इट्स कॉल्ड. सो इस चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है लोगों को, और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जी 18th अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके बाद जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का पार्ट है वो चला गया टू द प्रोविंसेस. उनका काम है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको उसमें से करें. और वहाँ आके हमारे पास बहुत मसले ये आ रहे हैं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से यू कुड से जो आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ वर्क जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, वो दे ट्राई नॉट टू पे द टैक्सेस. कई डॉक्टर्स को आप देख लें, वो दे प्रैक्टिस एट होम इन द इवनिंग्स और आफ्टरनून, व्हाटएवर टाइम यू चूज.
इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर.
इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड. कैश पेमेंट होती है,
बिल्कुल,
और वो वहीं के वहीं गायब हो जाती है. इसी तरह आप लॉयर्स को देख लें, जो कि शाम के वक्त प्रैक्टिस करते हैं, जो दिन की उनकी प्रैक्टिस होती है, चलें फिर भी वो भी ना ज़रा डॉक्यूमेंट हो जाती है, लेकिन शाम की प्रैक्टिस नहीं होती. इसी तरह आप अगर कई स्टोर्स में आप चले जाएँ, रिटेल साइड पर चले जाएँ, तो रिटेल साइड में आप ज्वेलर्स के पास जाएँ तो वो तो आपको हाथ नहीं लगाते, वो कहते हैं कैश का चेक चाहिए या कैश चाहिए. मैं आपसे ना तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र लूँगा, ना मैं आपसे जो है वो पॉस पे कार्ड की पेमेंट,
राइट.
एंड द फर्स्ट टाइम आई ऑब्जर्व दिस, मैं जब वापस आया था पाकिस्तान 2020 में, तो उस वक्त मैं FBR मैंने ज्वाइन किया, एक हमारा पुराना एक ज्वेलर था इस्लामाबाद में, उसके पास मैं चला गया, तो वैसे ही बैठा हुआ बात करता था, तो वो पूछ रहे थे मेरे से कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं आजकल, तो मैंने उनको बताया, तो एकदम ना वो एकदम एक जरा शौक सा आ गया, पकड़ा गया. सो उसमें फिर मैंने उनको समझाया कि आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि अगर कोई इंसान कोई एक ज्वेलरी की दुकान पर आया है तो ऑब्वियसली दैट विल बी हाई टिकट परचेस, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं लोग इतना पैसे जो है कैश में लेके घूमेंगे सड़कों पे, जो हालात हैं हमारे वैसे ही. तो कहते हैं सर वो आप कैश का चेक दे दें, फिर हम कर लेंगे उसको. तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि हुआ क्या है कि मैं इस बाजार में बैठा हूँ, तो हमने सबसे पहले जो है वो पॉस की मशीन लगाई थी और हमने पेमेंट करनी शुरू की, और वो सेल्स टैक्स की सब कुछ हुआ गया, होना शुरू हो गया, तो बाकी जो ज्वेलर्स थे पूरे बाजार में वो इनके पास आ गए. उन्होंने कहा जी ये क्या कर रहे हैं आप, हमारी तो आप बिजनेस ख़राब कर देंगे. इसलिए कि जितना ये सेल्स टैक्स पे कर रहे थे, सारों का कंबाइंड उतना नहीं बन रहा था जितना कि एक दुकान पे कर रही थी.
There is an evidence against those.
Absolutely, right? Yeah. And that is why we need to really work on this,
I think isme ek aur jo challenge aata hai ki from an individual jeweler's perspective, agar hum jeweler ki hi baat kare, to they also have to compete with other jewelers jo जो कि नहीं चार्ज कर रहे हैं टैक्स. सो अगर आपने अपनी 16% 17% प्राइस बढ़ा देनी है तो यू आर कम्पीटेड आउट ऑफ द मार्केट. सो बेसिकली जो कंप्लायंस इंप्रूव करनी है, इट हैज टू बी लाइक आप सबको लेके आओ टैक्स नेट में. इट कांट बी कि आप सिलेक्टिव लोगों को
100%. अगर आपको याद हो डॉक्टर साहब के जो FATF की हम ग्रे लिस्ट पे चले गए थे और उसमें one of the things that was highlighted was, well, few were highlighted. So, practices which were running outside of the traditional offices, unki baat hui thi. Lawyers ki, doctors ki, unki baat hui thi. Jewelers ki baat hui thi. Real estate transactions ki baat hui thi. Aur uske alawa vehicles ki transactions ki baat hui thi. Ye sab cheezein jo hain, agar aap chale jayein, to agar aap ek प्रिंसिपल डीलरशिप के पास जाते हैं तो वो तो आपसे पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ले लेंगे या क्रॉस चेक ले लेंगे. लेकिन अगर आप किसी नॉन ट्रेडिशनल वाले के पास चले जाएं जो टर्शरी में अगर है सेकेंडरी या टर्शरी, उसमें दे विल ओनली डील ऑन कैश. और फिर आपको कुछ नहीं पता कि आपकी वो गाड़ी ट्रांसफर हुई आपके नाम से कि नहीं हुई, कि क्या क्या हुआ. एंड दीज आर वेरी ट्रिकी एरियाज.
Of course. And I think that the reason we're talking about this is कि हमें लगता है कि digital transformation का जो process है वो इसको किसी तरीके से address कर सकते हैं.
बिल्कुल बिल्कुल.
तो let's switch our discussion to that. So how would you describe कि इस वक्त पाकिस्तान में जो digital transformation, and I'm linking it back to जो आपने शुरू में process layout किया था कि digitization, digitalization and then digital transformation. So उस process में how do you see कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे fall कर रहे हैं and where our tax administrations are, more generally including provincial and federal administrations. How do you see those?
So I think I must say that there has been significant progress made over the last I'd say about 5 to 7 years.
Okay.
Bahut farak pada hai. Jab main pehle Pakistan mein hota tha to paper hum returns file karte the. Jab main wapas pahuncha tha, I was very pleased to see ki all electronic returns. The entire process was electronic. additional payment जो मैंने extra करनी थी वो भी electronic थी, payment gateway के through. वो सब कुछ हुआ. उसके अलावा जो I know के जब मेरे होते हुए FPR में एक चीज़ शुरू हुई थी कि we wanted to remove the touch points between the taxpayer and the tax administration officials. As you can imagine, most of issues happen at that touch point,
exactly,
right?
Yeah.
अब आप अगर वो फिजिकली उनको सेपरेट कर देते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन, और उसको कॉन्वर्सेशन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो कॉन्वर्सेशन में ये चीज नहीं हो सकता कि यार ये इसमें इस तरह कर ले तो ये हो जाएगा. सो हमने क्या किया कि हमने जो इन पर्सन हियरिंग्स होती थी रीजनल टैक्स ऑफिसेस में, उनको हमने वर्चुअल कर दिया. इवन इफ द ऑफिशियल वाज सिटिंग इन द सेम बिल्डिंग अपस्टेयर्स इन हिज ऑफिस, ही वाज नॉट अलाउड टू कम डाउनस्टेयर्स and actually engage with the taxpayer. So humne iska pilot kiya tha, uske baad mere chhodne ke baad aur logon ne bhi usko aage badhaya. But wo niche humne virtual meeting rooms bana diye, usme ek monitor laga diya, camera hai uske sath mein, wo taxpayer aake wahan baithta hai, apne sare papers shapers leke aata hai, jo usne paper submit karne hai wo ek official aake baad mein usko receive karke le jayega. Lekin everything became virtually separated and there was an immediate positive response to that from the taxpayer as well. इसलिए वो कहता था यार अब मेरे से वो जो वगैरह इधर उधर की बातें होती हैं वो नहीं होती. और ऑफिशियल का ये था कि वो उनके लिए एक वो टाइम भी सेट हो गया कि यार लोग सिर्फ इस वक्त आ सकते हैं, इसलिए अपॉइंटमेंट हमने कैलेंडर ओपन कर दिया. उस स्लॉट पे आएंगे, उस स्लॉट पे चले जाएंगे, अगले वाले की बारी आ गई. वरना लोग आके बैठ जाते थे, वो बेचारे ऑफिस ऑफिशियल भी जो है उसके बाहर जो है 50 लोग
बैठे लाइन लगी होती.
सो दोनों साइड
बड़ी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी है उसमें शुरू होने
शुरू. सो वो किया. उसके बाद हमने जो एक ट्रैक एंड ट्रेस का जो सिस्टम बहुत फेमस, उसके बारे में बहुत बातचीत हुई थी, प्रेस में भी बहुत आया था. वो हमने शुरू किया था विद द टोबैको इंडस्ट्री. सो टोबैको में हमने उसको एक कंपनी के एक प्लांट में एज अ पायलट इंस्टॉल किया. अबो दैट इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम. नाउ व्हाट इट डज इज ऑन द असेंबली लाइन फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स, वो बिफोर द सेलोफेन पैकिंग हैपेंस, सो डब्बी में सिगरेट्स डल गए, उसके बाद वो आगे जाता है एक जगह पे, वो एक स्टिकर उस पर इंस्टॉल होता है, उसके बाद उसकी सेलोफेन रैपिंग होती है, फिर उसके बाद एक कैमरा है जो कि उस स्टिकर पे से जो QR कोड है विच इज़ यूनिक टू 16 बिलियन इन वन, और उसको वो स्कैन करता है और उसको एक्टिवेट कर देता है. ना वो जब एक्टिवेट हो गया तो उसके पास रिकॉर्ड में आ गया कि जी इस कंपनी का इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, इस दिन ये पैक ऑफ सिगरेट्स पैक हुआ है, इसका जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो कलेक्ट हो गई है या पे हो जाएगी, ये लायबिलिटी बन गई उनकी, और वो आगे पैक होके वो इनटू स्मॉलर कार्टन्स एंड देन बिगर कार्टन्स एंड देन शिप आउट ट्रक तक वो हम उसको फॉलो कर सकते थे. उसके बाद जब वो ट्रक से वो वेयर हाउस पे पहुंचा, वेयर हाउस में भी हम फॉलो कर सकते थे, इसलिए वो डब्बों के ऊपर जो QR कोड थे दे यूज्ड टू हैव अ रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या QR कोड्स हैं ऑल द वे डाउन टू द बॉक्स एंड देन इवेंचुअली व्हेन इट इज सोल्ड सो द टैक्स ऑफिशियल्स कुड गो टू एनी पान वाला या वेयरएवर इट इज बीइंग सोल्ड and they had their own app jisko wo scan kare to unko pata chal jayega iski puri traceability from the time it became a cigarette to when it is being sold ho jata and then we authorized tax officials to go out and jahan jahan unko wo revenue stamp ke bagair cigarette mila they could confiscate it as non tax paid product now you can imagine the potential of that so first we did tobacco then we did sugar in 2020 ka crushing season 84 plants of sugar, all of them that produce sugar in Pakistan were installed with this. Now, what happened was, iska farak ye pada ke jo pichla jo crushing season tha compared to this crushing season, we suddenly became a net exporter of sugar as compared to a net importer of sugar in the past. Why? There was no additional installed capacity. It was purely documenting what was being produced.
पहले जो
स्मगल होके जा रहा था एग्जैक्टली जो आपने बहुत सुना था अफगानिस्तान चला गया ईरान चला गया वट एवर यू नो वो जहां भी जाता था वो सारी वो स्मगलिंग रुक गई इसलिए कि अब डॉक्यूमेंट हो गया तो अब कंपनी जिसने प्रोड्यूस किया शुगर उसको दिखाना है कि यार मैंने अपने वेयर हाउस में आगे भेजा इतना उसकी इतनी सेल्स टैक्स हुआ वगैरह वगैरह उसने पे किया उसके अगले वाले ने उसने पे किया एंड देन इट फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट सो ये सप्लाई चेन की जो इंटीग्रेशन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो सॉरी मैंने ज़रा ज़्यादा बात कर ली उसके बारे में लेकिन इसके अलावा जो कस्टम साइड पे भी हमने बहुत कुछ वर्चुअल असेसमेंट्स और क्लियरेंस इन द स्काई और ऑन द सी कि बिफोर द कंसाइनमेंट यूज्ड टू अराइव उसकी क्लियरेंस पहले ही हो चुकी होती थी बिकॉज द डॉक्यूमेंटेशन वाज ऑल इलेक्ट्रॉनिक इट वाज पास्ड ऑन टू द लोकल कस्टम्स उनको पता था कि किस कंटेनर में क्या सामान आ रहा है एंड क्लियरेंस तेज हो जाती सो आवर पोर्ट्स बिकेम मच मोर एफिशिएंट एंड ऑब्वियसली जो इम्पोर्टर्स थे उनका फायदा हुआ और फिर एक्सपोर्टर्स का भी इसी तरह से फायदा हुआ सो ये काफी चीजें हुई
दिस इज ग्रेट आई थिंक माय लिसनर्स के लिए भी दिस इज वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं बट आई वुड लाइक टू मे बी टेक अ सिनिकल स्टांस एंड से के इसमें अब हम ठीक है इतने इनिशिएटिव्स हम कर रहे हैं ट्रैक एंड ट्रेस कर लिया पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस कर रहे हैं ई पेमेंट की आपने बात की ई फाइलिंग की सो वी हैव बीन डूइंग ऑल ऑफ दीज इनिशिएटिव्स एंड येट अगर आप पाकिस्तान के एक मैक्रो लेवल पे परफॉर्मेंस देखें इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यूज दैट वी आर जनरेटिंग इट्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड हमारी जो टैक्स टू GDP रेशो एक कॉमन स्टार्ट्स यूज़ की जाती है टू सी के कितना हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ आर इकोनॉमी It's below 10% and historically it has remained below 10%. जबकि आप इसको compare करें to advanced economies, वो कुछ 40% के करीब पहुँची हुई है और even अगर पाकिस्तान को चलें it's unfair to compare Pakistan to UK या Scandinavian countries, but अगर हम पाकिस्तान को चलें compare कर लें to countries which are at the similar level of development, like India में आप देख लें कि 16% 17% पे उनकी tax to GDP ratio and in other countries who are doing really well at the same level of Pakistan's development, तो वहाँ पर tax collection is much better. तो और पाकिस्तान में सो देयर इज दिस प्रोफेसर मज़हर वसीम एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ही हैज लुक्ड एट वेरियस रिफॉर्म्स दैट हैव बीन इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट पाकिस्तान्स हिस्ट्री एंड उनकी फाइंडिंग यही है कि वी कीप डूइंग दी रिफॉर्म आफ्टर रिफॉर्म बट ये जो हमारे ओवरऑल कंप्लायंस है इट्स नॉट रियली चेंजिंग मच लाइक वी आर स्टिल स्टक एट दैट लो कंप्लायंस लेवल तो व्हाट डू यू सी लाइक व्हाट डू यू सी द चैलेंजेस आर फॉर पाकिस्तान कि हम इवन विद ऑल दीज अटेम्प्ट्स एट ट्रांसफॉर्मिंग आवर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज आवर रेवेन्यूज
लोडेड क्वेश्चन इसमें देखें हमारा एज आई सेड बिफोर एज वेल के हमारा जो है ना वाइड स्प्रेड कल्चरल इशू है टैक्स इवेजन एंड टैक्स फ्रॉड का लेट्स कॉल अ स्पेड राइट वी नीड टू बिफोर वी कैन इम्प्रूव आर सेल्व वी हैव टू एक्सेप्ट वेयर वी आर रॉन्ग एंड उसकी वजह से जो FPR है आई नो कि बहुत लोगों का आज भी सुबह भी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था तो उसमें यही लिखा हुआ था कि जी FPR इज़ द लार्जेस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान मुझे भी शुरू में ऐसे लगता था जब मैं बाहर था लेकिन जब मैं उनके अंदर घुस गया तो मुझे ये भी फील हुआ कि यार बेचारे वो भी मजबूर हैं क्यों इसलिए कि बहुत सारी मेजर्स बहुत सारी चीज़ें वो भी प्रपोज करते हैं मैं मेरे होते हुए मैंने खुद किया ये कि हमने big data istemal karke, we started to analyze ki yaar sales tax wagara on just one tax code, which was transactions of purchase and sale of vehicles. Humne sirf usko tax code ko pakad ke humne uski analysis shuru ki. To hamare ek dur daraz ke bade shahar mein ek sahab ka naam highlight hua. Ek hi CNIC pe wo sahab ka naam tha, 3600 unke was gaadiyan registered thi unke naam pe.
Wow.
Right? And physically it's impossible, right? Kya chakkar kya hai yaar? Uske bare mein jab pata kiya to wo ek partner the in some tertiary dealership jahan se ke gaadiyan bikti thi, lekin the registrations never used to transfer to the new buyer.
Wo apne naam pe
thi. Wo apne naam pe rakhte the. Ab come to think of it, کیوں نہیں آپ رجسٹر کریں گے؟ میں نے اگر جا کے گاڑی خریدی نا, میں سب سے پہلے جاؤں گا میرے نام پہ گاڑی رجسٹر,
سیکیورٹی
میرا ایسٹ ہے, ٹھیک. لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ کل کو مجھے دکھانا نہیں پڑتا کہ یار میں نے خریدی گاڑی. جب میں نے خریدی نہیں ہے تو پھر مجھے یہ نہیں دکھانا پڑتا کہ وہ اس کا پیسہ کہاں سے ہے وغیرہ وغیرہ, اینڈ اٹ جسٹ کیپس آن فلوئنگ, رائٹ.
اور
ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی نہیں پے کرنے پڑتے آپ کو, رجسٹریشن فی نہیں پے کرنی پڑتی آپ کو, ہر سال جو ہے رجسٹریشن رینیول نہیں پے کرنی پڑتی وغیرہ, ساری چیزیں. سو یہ چیزیں ہیں جو کہ وی ہیو ٹو ویک اپ اینڈ ریئلائز کہ یار یہ دس ریکوائرز لاٹ آف پولیٹیکل ول. ناؤ واٹ آئی ایم ریئلی ہوپ فل فار کہ اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہے ان پلیس, دے have the backing of all the relevant agencies and authorities ki yaar isko enforce kare. Main yahi gaadi ka example leta hu aap se, right. Gaadi ka mujhe ye bataye ki jab aap jaake primary dealership se khareedte hain to us waqt unke paas to mandate hai ki ji main usko register kiye bagair in the name of the buyer, say Mansoor Sultan, wo gaadi wahan lot se nikal nahi sakti. Maine bhi gaadi Islamabad mein khareedi, is tarah hua hai mere sath کہ میں, انہوں نے کہا جی آپ جب تک وہ رجسٹریشن آ نہیں جائے گی وہ ہم دے نہیں سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اسمارٹ کارڈ بعد میں آئے گا, پلیٹیں بعد میں آئیں گی. میں نے کہا ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں. سو جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ آپ کو اپلائیڈ فار رجسٹریشن والی گاڑیاں کیوں نظر آتی ہیں سڑکوں پہ؟ انہوں نے موٹر وے پہ بند کر دی تھی کہ جی وہ جو ڈیلر شپ والی لگی ہوتی ہیں پیپر کی وہ چٹھیاں, وہ نہیں الاؤڈ ہوں گی. تو لوگوں نے, پیپل آر ویری اسمارٹ, ہمارا عقل بہت تیز ہے, پاکستانی ہم بہت تیز لوگ ہیں, لیکن ہم غلط چیزوں پہ کام کرتے ہیں. اب وہ اس میں انہوں نے فگر آؤٹ کہ جی ہم نے اے پی ایف, اے پی آر, اے پی, اب ہر قسم کی کمبینیشن کی آپ کو پلیٹیں نظر آئیں گی, اینڈ کلیئرلی دے آر فیک. سو آئی آسک, بینگ اگین ڈیولز ایڈوکیٹ اور وٹ ایور یو وانٹ کال می, آئی آسک کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے کیوں نہیں یہ کہتے کہ جی یہ ڈیڈ لائن ہے آپ کی, اگلے 3 مہینے کے اندر اندر ایوری سنگل کار مسٹ بی ویریفائڈ اینڈ چیکڈ ان اے شہر, رائٹ. اور آپ کے پاس بہت ساری فیسلٹیز ہیں, آپ یہاں کریں کہ جی قذافی اسٹیڈیم میں ہر روز جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک لائنیں لگیں گی. کووڈ کے لیے کیا تھا نا لوگوں نے, جا کے ٹیسٹ کروائے تھے, جا کے انجیکشن لگوائے تھے,
جب ارجنسی
تھی نا, جان کا خطرہ تھا. تو اس کا کیا مطلب ہوا تھا کہ موٹیویشن صحیح ہونی چاہیے ہمیں. سو ہمیں اس چیز کو بہت توجہ رکھنی ہے کہ ہمیں موٹیویشن صحیح دینی ہے. کچھ لوگوں کا دماغ جو ہے وہ چلتا ہے پازیٹیو موٹیویشن پہ, کچھ لوگوں کا دماغ چلتا ہے ذرا ڈنڈے کے ساتھ. وی جسٹ نیڈ ٹو فائنڈ دا رائٹ مکس.
بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سو تھنکنگ اباؤٹ دا رائٹ مکس, آئی ایم تھنکنگ, کیونکہ ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں آف کورس دیز آر آل دا چیلنجز, پولیٹیکل موٹیویشن, ایون جرنل کل جو ٹیکس کلچر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, دیٹ از سارٹ آف مسنگ. سو ان ٹرمز آف سارٹ آف تھنکنگ اباؤٹ دی اپرچونیٹیز دیٹ آر دیئر, کہ گیون آل دیز پرابلمز دیٹ پاکستان ہیو, ہمارے یہاں سوشل نارمز ٹیکس پیئنگ کے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, ایون ٹیکس پے کرنا از ناٹ کنسیڈرڈ لائک اے گڈ تھنگ, لائک لاٹ آف پیپل ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ وہ ٹیکس نہیں پے کرتے, اور اگر کوئی پے کر رہا ہے تو اس کا مذاق اڑائیں گے کہ تم کیوں پے کر رہے ہو. تو سو گیون آل دیز کنسیڈریشنز, ہاؤ ڈو یو سی کہ جو ٹرانسفارمیشنز ہیں وہاں پہ اب فیوچر کے پوٹینشیلس کیا نظر آتے ہیں آپ کو, کہ ہم کن کن ٹیکنالوجیز میں یا کیا کیا سسٹمز ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں جو ان ایشوز کو کے ہوتے ہوئے اسی طرح کی انوائرمنٹ میں ان کو کسی حد تک ایڈریس کر سکتے ہیں؟
ایک چیز ہے جی جو کہ بہت لوگوں کی لانگ اسٹینڈنگ کمپلینٹ ہے کہ جی ایف پی آر کے سسٹمز جو بہت کمپلیکس لگتے ہیں. And honestly, they do look complex. They have been designed from a perspective of a tax official. वहाँ जो different categories होती हैं जो उनको fill करनी होती हैं उसमें वो tax code number लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता कि उसका मतलब क्या है. So even myself, मुझे तो नहीं पता था कि भी tax code 001-425 का क्या मतलब है. उनको उस चीज़ को चेंज करना है. सो उस चीज़ को चेंज करने का एक तरीका ये है कि जैसे दुनिया भर में होता है कि टर्बो टैक्स टाइप सॉल्यूशंस हैं यूएस में, दे आर हैवीली यूज्ड. हमारे पास पाकिस्तान में देर आर 7-8 कंपनीज हु हैव एक्चुअली स्टार्टेड वर्क ऑन दैट. बी फाइलर इज वन, अपना टैक्स इज वन, टैक्स मुआविन इज वन. सो ये एक यूजर फ्रेंडली टाइप एनवायरमेंट क्रिएट करके उसमें वो उनको करवाते हैं सारा. So, हमें भी ये करना चाहिए.
वो सिस्टम क्रिएट करने की बात है ना. I've used TurboTax. उसमें सिर्फ मुझे, क्योंकि अगर आप सैलरीड हो फिर तो 2 मिनट से ज्यादा लगते नहीं है.
Just
have to, आपको एक स्टेटमेंट मिल जाती है आपके जो भी विदहोल्डिंग टैक्सेस हुए हैं. बस आपने वो प्लेटफॉर्म खोला, इट्स लाइक अ वेरी यूजर फ्रेंडली, एक फॉर्म फिल किया, एक 2-4 नंबर इनपुट किए एंड दैट्स इट, यू आर डन.
और वो गेमिफिकेशन हुई भी उसमें काफी हद तक, ठीक है. सो इट्स वेरी सिंपल. आई स्टिल फील कि हमारे पास भी फॉर एग्जाम्पल जो इनकम टैक्स सोर्स करता है या जो हमारी विदहोल्डिंग टैक्स की एंट्रीज हो जाती हैं या हमारे GST कट जाता है, सो ये सारी चीज़ें FPR के पास इन सम शेप और फॉर्म पहुंचती हैं. मेरा एक जो ड्रीम था उस पर जो कि फुलफिल नहीं हो सका वो, बट इंशाल्लाह होगा एट सम टाइम, वाज कि हम प्री फिल करके टैक्स रिटर्न्स अवेलेबल करें
ताकि लोगों का बर्डन कम हो.
एग्जैक्टली, आसान हो जाए,
वही चीज एंट्री नहीं करनी पड़े जो कि पता है.
सो मैं यूके में टैक्सेस पे करता था, HMRC के पास मेरे टैक्स रिटर्न्स होते थे. जब मैं हर साल लॉगिन करता था तो उनके पास सारी वो इन्फॉर्मेशन पहले से थी और वो उसको अवेलेबल इसलिए रखते थे एडिटेबल कि यार इन केस यू नीड टू मेक अ चेंज. स्पेशली अगर चैरिटी के एरिया में अगर आपने चैरिटी पे की है उसको टैक्स ब्रेक मिलता है आपको. वो चैरिटी का आपके पास अगर एविडेंस है सारी, आप मिला के उसको सारे को वो एंटर कर दें, वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं एंड देन यू नो गेट, यू गेट थ्रू. अब उसी तरह से एज यू फिनिश अप एंड फाइल योर रिटर्न, उसमें आ जाता था कि जी कितने आपने एक्सेस पे कर दिया या कितना आपका ड्यू है. तो ड्यू आप वहीं का वहीं कर सकते हो, जो कि हम भी कर सकते हैं. लेकिन जो रिटर्न वाला है, मतलब कि रिफंड, रिफंड यूज टू टेक 7 days. 7 days ईदर आई यूज टू गेट ए चेक इन द मेल, which is now very rare, or I used to get a transfer into my account. वो account details आपसे capture करते थे और directly आपके account में आते. वाह, why can't we do this, right?
मेरे पिछले 3 साल के tax returns हैं जो मुझे file किए हुए हैं, लेकिन लेने के लिए मुझे उनके office चक्कर जब तक नहीं लगाऊंगा, वहाँ पे धक्के नहीं खाओगे, आप वो कागज पे कागज नहीं दोगे, तब तक वो return नहीं मिलेगा.
Absolutely.
तो वो मैं 3 साल से नहीं कर रहा.
सो दैट इज अनफॉर्चुनेट, राइट? ये है. अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अब तो इतना डेटा जमा हो चुका है, नॉट ओनली फ्रॉम द टैक्सेस एरिया बट ऑल्सो फ्रॉम स्टेट बैंक की तरफ से मैंडेट है फॉर ऑल द बैंक्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. अबव 250,000 रुपीज के ट्रांजेक्शन पे रिपोर्टिंग है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आती है. तो अब उस पे डेटा एनालिटिक्स और AI इस्तेमाल करके द लॉट ऑफ स्टफ कैन बी प्रिडिक्टेड. हमने इसके बारे में काम शुरू किया था कि भाई बेस्ड ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और उस पे विदहोल्डिंग टैक्स जो कलेक्ट हुआ है उसकी बेसिस पे वी कुड प्रिडिक्ट कि भाई उनके पास अगर 3 गाड़ियाँ हैं और 1 बंगला है डिफेंस में और ये यहाँ कमाते हैं और ये वाला क्लब की मेंबरशिप है और बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, तो वी कुड प्रिडिक्ट यूजिंग AI कि यार उनकी इनकम जो है अप्रॉक्सीमेटली इस ब्रैकेट में आती है, जिसकी वजह से उनका जो इनकम टैक्स आना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली ये आना चाहिए. नाउ एज सून एज यू डू दैट ऑब्वियसली यू स्टार्ट टू सी गैप्स एंड डिस्क्रेपेंसीज, राइट? एंड देयर मे इंशाल्लाह देयर मे बी सेवरल पीपल हु आर एक्चुअली ओवर पेइंग, दैट्स फाइन, बट that is where you need to start focusing, and that again goes back to the point ke yaar political will ki baat hai. If we chase after certain people, and unfortunately hamare culture mein wahi wali baat ke jo zara bade stature ke log honge unke shayad is kisam ke gaps zara zyada
hain,
so wo phir unke piche jab jayenge to phir ye na ho ke bhai jo piche gaye to bechare uske transfer ho jaye ya uske kahin aur wo bechara ho jaye. اس قسم کی چیزیں جو
اس میں ایک اور چیلنج یہ بھی ہے کہ سو میں خود بھی میرے کالیگ ہیں مائیکل بیسٹ, وہ کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتے ہیں, تو ہم نے ایک ٹائم پہ یہ کچھ 7-8 سال پرانی بات ہے ایف بی آر کے ساتھ مل کے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا کہ جی ہم یہ ٹیکس پیئر پروفائلز بلڈ کریں گے, اور اس میں آف کورس دی آرگومنٹ از ایگزیکٹلی واٹ یو سیئنگ کہ ایف بی آر کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے فرام ویریس سورسز ود ہولڈنگ جہاں جہاں ہو رہی ہے دے ہیو انفارمیشن, بٹ اس کو اس طرح سے افیکٹولی یوز نہیں کیا جا رہا. تو ہم نے بڑا جی کام کر کے اپنے اکنامیٹرک ماڈل سیٹ اپ کر کے پریڈکشن وغیرہ کی یہی ایکسرسائز کی تھی, تو اس ٹائم پہ جو چیئرمین تھے وہ تھوڑے سے ان کا پازیٹیو ایپیٹائٹ تھا اس چیز کی طرف, بٹ ایز دا پروسیس واز گوئنگ آن ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ساتھ ہی آپ کے چیئرمین چینج ہو جاتے ہیں, نئے چیئرمین آتے ہیں اینڈ دے لوز کمپلیٹ, دے ہیو نو انٹرسٹ ان وہ چیزیں. تو آئی تھنک ایک ایف بی آر کا یہ بھی ایک چیلنج رہا ہے ہمیشہ کہ ایک وہ جو کنٹینیوٹی ہے ان ٹرمز آف امپلیمنٹنگ پالیسیز اور کس طرح سے چیزوں کو یوز کرنا ہے وہ ایک مسنگ ہے, اور انٹل وی انشور دیٹ کہ وہ ایک ایک اسٹیبل طریقے سے پالیسیز کنسسٹنٹلی امپلیمنٹ ہوتی رہیں تو پھر ہی ہم کچھ چیزوں
کو.
تو اس میں اب سو یو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ڈیٹا جو ہے ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ ٹیکنیکس کین ہیلپ اس گیٹ دیئر. ڈو یو سی ادر یوزز آف دیز ٹیکنالوجیز, فار ایگزامپل آج کل اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بلاک چین ہیز کریٹڈ لاٹ آف بز آل اوور دا ورلڈ, تو واٹ یو سی دا پوٹینشیل آف دیز ٹیکنالوجیز ان امپروونگ ٹیکس ایڈمنسٹریشن؟
سو اے آئی کا تو جیسے میں نے کہا نا کہ ڈیٹا انالیسس میں بہت استعمال ہو سکتا ہے. اے آئی کپلڈ ود مشین لرننگ اینڈ روبوٹک پروسیس آٹومیشن, لاٹ آف دیٹ اسٹف کین سوڈو آٹومیٹ, میک ایزیئر, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, پروسیسز جو کہ ادر وائز ذرا کمبرسم ہوں گی, تو وہ یو نو آسان. لیکن کرنا یہ نا کہ ٹیکس جو ہے نا ٹیکس پیئر اس کے لیے آسان کرنا ہے کام, وہ اس پہ برڈن کم ہوگا تو وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے یار میں اب کر دیتا ہوں, 5 منٹ تو لگیں گے. سو یہ چیز ہمیں کرنی بہت ضروری. اب اس کے علاوہ جو ہے نا بلاک چین, ناؤ دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ون بیکاز بلاک چین از اینڈ آئی بن اسٹڈنگ اباؤٹ بلاک چین, ایکچولی لوکنگ ایٹ بلاک چین ماڈلس فار کوائٹ اے فیو ٹائمس. وہ اس کو ایک چیز کو اس کا ایک یوز کیس جو ہے وہ 400% شیور ابھی تک جو ہے وہ آگے انڈسٹری میں آیا نہیں ہے, اس لیے جو بھی بلاک چین کے سولوشنز آئے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سولوشنز آئے ہیں. ہم نے ایچ ایس بی سی میں جب میں تھا تو اس وقت ہم نے کیا تھا کہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا تھا اس پہ ایک ہم نے ٹریڈ کا, کارگل کا ایک امپورٹ تھا جو کارگل واز بیسڈ ان انڈونیشیا, وہ ارجنٹینا سے امپورٹ کر رہے تھے آئی تھنک اٹ واز سویبین. سو اس کا دیٹ انٹائر ٹرانزیکشن اینڈ ٹو اینڈ واز آن بلاک چین. اب اس کا فائدہ جو پاکستان میں مجھے نظر آتا ہے وہ ہے ان دا پاکستان ڈیجیٹل اسٹیک. اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بات چیت میں کر چکا ہوں, پریزنٹ بھی کر چکا ہوں. سو پاکستان ڈیجیٹل اسٹیک از بیسکلی ون لارج اسٹیک آف سسٹمس جو کہ پوری گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ہوگا. اب اس میں سب اسٹیکس ہوں گے, فار ایک ٹیکس کے لیے ہوگا, ایک ایجوکیشن کے لیے ہوگا, ایک ہیلتھ کے لیے ہوگا, ایک لا اینڈ آرڈر کے لیے ہوگا وغیرہ وغیرہ, لیکن اوور آل وہ پاکستان ڈیجیٹل اسٹیک رنز آن فرسٹ آف آل بلاک چین, سیکنڈ آف آل دیر آر 4 فنڈامنٹل بلڈنگ بلاکس فار پاکستان ڈیجیٹل اسٹیک. نمبر 1 بینگ ڈیجیٹل آئیڈینٹی. سو نادرا الحمد للہ ہمارے پاس ایک بڑا ریڈی میڈ سولوشن ہے نادرا کا جو کہ ہم کر سکتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ڈیموکریٹائز کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ ایف پی آر, سو ٹیکس انفارمیشن ساری ہماری وہاں سے آ جاتی ہے. تھرڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینکس جو ہمارے ہیں وہاں سے فائنینشیل ٹرانزیکشنز آ سکتی. فورتھ از ایس سی سی پی, کمپنی اونرشپ اور کمپنی اسٹرکچرز. یہ 4 بلڈنگ بلاکس پہ آپ اگر کام شروع کریں تو آپ پاکستان ڈیجیٹل اسٹیک کو بہت آگے تک بڑھا سکتے ہیں, اور اس میں آپ کا جو کم از کم ایف پی آر کا جو کام ہے وہ زیادہ تر کور ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ لینڈ ریکارڈ میں آئیں گے تو آپ ایگریکلچرل لینڈ اور ادر وائز کمرشل لینڈ اور ریزیڈینشیل لینڈ کے بھی ریکارڈز آ جائیں گے. ہیلتھ میں آئیں گے تو لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں. نا جب آپ منسٹری آف انٹیریئر کے آتے ہیں تو پھر آپ کی انٹری ایگزٹ پوائنٹس, ایف آئی اے کی ٹرانزیکشنز جو کہ یو نو اس وقت بھی ہم ٹریک کرتے ہیں ایف بی آر میں کہ بھائی کسی کا اگر انٹرنیشنل ٹریول جو ہے وہ 2 سے زیادہ دفعہ ہوا ہے تو وہ فلیگ ہو کے ہمارے پاس ڈیٹا آتا تھا کہ اس نے یہ ٹریول کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ٹکٹ خریدا, ٹکٹ خریدا تو اس کے اوپر ود ہولڈنگ بھی ہے, ایکسائز ڈیوٹی بھی ہے, سیلس ٹیکس بھی ہے وغیرہ, یہ ساری چیزیں نا, دیز آر آل سورسز آف انفارمیشن. एंड अ लॉट ऑफ पीपल फील कि यार थोड़ा सा ये ज़रा इंट्रूसिव बिग ब्रदर वाली बात हो जाती है, लेकिन अगर हम एज गुड सिटीजन एंड गुड यू नो सिविक पर्सन हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हों तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है. हम अगर अपने पूरे टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा मसला ये है, राइट? हमें पकड़ने की जरूरत है.
एग्जैक्टली.
और वो पकड़ फिर इसी तरह आती है.
या
सो इस तरह की चीजें.
नहीं, आई थिंक व्हाट आई रीड फ्रॉम दैट इज के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करना सिर्फ FBR या एक टैक्स अथॉरिटी नहीं कर सकती. यू नीड एक मल्टी फैसेटेड पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरे गवर्नमेंट के वेरियस इंस्टीट्यूट्स, जैसे लाइक स्टेट बैंक, इवन ये जो बिजलियों के बिल आ रहे हैं, सो आप में लेस्को और ये एस्को, इनकी आपको पार्टनरशिप चाहिए. लैंड में आई थिंक इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्सेस, माई वर्क ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, आई हैव सीन के उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो टैक्स अथॉरिटी जिसने टैक्स कलेक्ट करना है, एक्साइज एंड टैक्सेशन, उनके पास फॉर एग्जाम्पल लैंड रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं है.
यस.
जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास.
करेक्ट.
एंड देर आर दीज गैप्स बिटवीन दीज टैक्स अथॉरिटीज के दे आर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर, जिसकी वजह से उनकी एफिकेसी जो है वो एक काफ़ी लिमिटेड चल रही है. सो ऑफ कोर्स आई थिंक वन थिंग दैट्स रियली क्रिटिकल इज के टैक्स अगर हमने सीरियसली इम्प्रूव करना है तो वी कोऑर्डिनेट ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स टुगेदर और उसके अकॉर्डिंगली अप्रोच क्रिएट.
डॉक्टर साहब, इस पर मैं थोड़ा सा एक ऐड चीज करूँगा कि इस वक्त एक काउंसिल बना हुआ है एट इन इस्लामाबाद जो कि फ्रॉम सो इट्स चेयर्ड बाय चेयरमैन नादरा. उसमें जो आपके चीफ सेक्रेटरीज हैं ऑफ ऑल द प्रोविंसेस दे आर रिप्रेजेंटेड. उन्होंने फर्दर डेलीगेट डाउन किया हुआ है टू द चेयरमैन ऑफ द रेवेन्यू बोर्ड्स. उसमें FBR की भी मेंबरशिप है, स्टेट बैंक की भी मेंबरशिप है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की मेंबरशिप है, बहुत सारे लोग इस तरह से हैं. सो द राइट, एक्चुअली बहुत सारे मतलब कि द राइट पीपल आर देयर, द राइट स्टेक होल्डर्स आर देयर. और उस पर यही काम हो रहा है कि डेटा एक्सचेंज पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं. अभी तक हमने FBR में MOU साइन किए हुए थे विद वेरियस एजेंसीज, जो आपने भी बात की, मैंने भी बात की, उसमें यही होता था कि दैट वाज जस्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग.
Enforceable नहीं है.
Enforceable नहीं है. So ये जो एक काउंसिल क्रिएट किया गया है ये enforceable है. जनरल साहब बैठते हैं उस पर, he is chairing NADRA, so वो automatically enforceable हो गया. Everybody will kind of come to that. So उस पर काम हो रहा है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है from what I hear.
No, that's great to hear, I think. So इसमें I think हम थोड़ा सा we are running out of time, conclusion की तरफ जाना है. तो इसमें maybe Mansoor साहब just maybe highlight some of the risk attached with this. Like हम बात करें कि डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं, we can आपने पहले भी बताया कि people might complain कि ये big brother आ गया. So how can we address those risks with digital technologies? और फिर उसके में अगर आप कोई और बैरियर्स देखते हैं इन ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दोस, तो वो क्या होंगे?
गुड क्वेश्चन. आई थिंक ये हमारे होते हुए भी जो है ना एक इंसिडेंट हुआ था 2020 अगस्त 14th, दैट देर वाज ए डेटा ब्रीच. दैट वाज एक्चुअली नॉट अ डेटा ब्रीच बट इट वाज जस्ट अ ब्रीच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो उस वक्त भी साइबर सिक्योरिटी पे बहुत काम होना था. अभी भी आई फील कि होना है. हमारे पास असल में साइबर सिक्योरिटी की भी जो अंडरस्टैंडिंग है ना एट पब्लिक सेक्टर लेवल, वो ज़रा मेरे ख्याल से ज़रा लैकिंग है. हमें रियली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. इसलिए कि हमारा ये ख्याल होता है कि हम सिर्फ अपने सिस्टम्स लगा देंगे, फायरवॉल्स लगा देंगे, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स लगा देंगे, उससे काम हो जाएगा. नहीं होता. एप्लीकेशन लेयर पे हमें समझने की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की हमें ज़रूरत है, हमारे स्टाफ को समझने की ज़रूरत है कि क्या करना है. सो साइबर सिक्योरिटी इज़ नंबर वन रिस्क इन माई व्यू. नंबर टू पर डेटा प्राइवेसी. अब वो डेटा प्राइवेसी में नादरा ने ये किया है कि दे हैव इशूड कंसेंट बेस्ड एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेस्ड एक्सेस टू डेटा. सो अगर आप अब जाते हैं कहीं वेरिसेस करवाते हैं किसी बैंक में या टेलको पे, तो आपको SMS आएगा जिसके थ्रू आप वो उसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि यू आर द वन हु इज रिक्वेस्टिंग फॉर दिस. एक तो पहली बात बायोमेट्रिक होगा, फिर उसके बाद आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा. सो ये चीज़ें, इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें जो कि हम कर सकते हैं,
जो एग्जिस्ट करती हैं,
जो एग्जिस्ट करती हैं, एब्सोल्युटली,
उनको अडॉप्ट करने
की, वी जस्ट नीड टू अडॉप्ट, वी नीड टू इंटीग्रेट.
Absolutely. Yeah, Mr. Sab, thank you so much. I think I would like to move towards the conclusion of this podcast. Ek cheez jo main khud highlight karna chahunga ke being an academic and involved with this work on tax administration, I think ek untapped potential Pakistan mein exist karta hai where we are not collaborating or enabling collaboration between academia, public sector, private sector. Wo cheez thodi si missing hai. Aur usme I feel like aaj hum podcast host kar rahe hain through CDPR, Consortium for Development Policy Research. There are institutes like SERP, Center for Economic Research in Pakistan. LUMS mein hamara Mehboobul Haq Research Center hai, International Growth Center hai, jo ke ye koshish kar rahe hain cheezon ko enable karne ki aur ye collaborations banane ki. So I think that's a very important avenue going forward ke hum this is not a small problem. Like Pakistan ka ek bahut major masla hai hamari low revenue collection, and we bring all stakeholders together aur jo contribute kar sakte hai wo enabling environment ke liye create kiya.
Agree.
So with that, I would like you to give us some last words. Anything you would like to say for tax administrations, Pakistan going forward, kya hame karna chahiye, and then we'll conclude.
So I think again you've hit the nail on the head. I think public private partnerships, public sector tends to kind of shy away from them because they feel that there could be people who are trying to take advantage of the situation. Lekin the trust has to be there. The trust has to be there because you need the public sector needs to realize that the private sector has much more to offer than just wanting to steal away whatever they think they are at risk for. Or उसके अलावा एक पब्लिक सेक्टर का एक सर्टन परस्पेक्टिव है जो कि बहुत सालों की ट्रेनिंग में आता है. उसको हमें चेंज करना है. ये अब ये वो कॉलोनियल ज़माना नहीं रहा. अब ये ज़माना बहुत चेंज हो गया है. यंगर जनरेशन इज वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन एंड दे नीड टू बी टैप्ड इनटू. हम उनको क्यों नहीं बोलते, हम फोकस ग्रुप क्यों नहीं करते, बुलाएं लोगों को, हम बोलें कि जी हम ये नया सिस्टम बना रहे हैं, आप बताएं कि आपके लिए मुश्किलात क्या रही हैं, आप इसको किस तरह से आसान समझते हैं, आइडियाज बताएं, एंड वी टेक दोस आइडियाज एंड वी लुक एट देम, वी डाइजेस्ट देम, वी यू नो व्हेन वी पिक आउट द टॉप वंस एंड देन वी इंप्लीमेंट देम. सो ये चीज हमें
ऐसे लोग भी फील करते हैं कि दे आर इन्वॉल्वड एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग.
ओनरशिप आती है.
या बिल्कुल.
एंड एकेडमिया में कितना कुछ नहीं अवेयरनेस आती कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है.
या ऑफ कोर्स.
हम लेके आए, हमें पता है कि चाइना में जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स का सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा हुआ है. हमें पता है कि रशिया में एसएमई लेवल पे जो टैक्स कंप्लायंस है वो टॉप ऑफ द लाइन है. हमें पता है कि सिंगापुर और एस्टोनिया में टॉप ऑफ द लाइन ई गवर्नमेंट सिस्टम्स लग चुके हैं, जहाँ के एक सिटीजन को कहीं नहीं जाना पड़ता किसी काम के लिए, वो अपने घर से या अपने मोबाइल से हर गवर्नमेंट सर्विस को एक्सेस कर सकता है. बनी बनाई चीजें. आप अगर यूनाइटेड नेशंस का ITU को देख लें तो वहाँ गव स्टैक का एक पूरा सिस्टम तैयार है. दे ऑल दे आस्क इज सम इंफॉर्मेशन एंड यू कैन टेक द एंटायर स्टैक. व्हाई कांट वी इंप्लीमेंट दैट? इसमें पैसे नहीं लगते, इसमें सिर्फ दिमाग लगता है.
दिमाग चाहिए, इनिशिएटिव चाहिए.
इनिशिएटिव चाहिए. हमें डिफरेंट तरह से सोचना है एंड दैट इज माय मैसेज टू पीपल.
Thank you, Mansoor Saab. I think this was a wonderful discussion. And there is, I feel like we have talked about a lot of challenges that Pakistan face, but I think there's also hope there.
Yeah, absolutely.
And so this I would think of this discussion as being very hopeful and
progressive. Inshallah. So, thank you so much.
Thank you so much.